उधर जी पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम. आज है बुध 13 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी अक्टूबर के 20 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ. नाम है मेरा अदील. सनराइज शो विद अदील अजहर में मैं आपको कहता हूं खुशामदीद. उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे. आप लोग की सुबह का आगाज भी अच्छा गुजरा होगा. आप लोगों की गुज़श्ता दिन की जो तातील थी वो भी अच्छी गुजरी होगी और क्या कहते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी आपने रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया होगा. वेल प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और इसके अलावा अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं सो यू कैन ट्वीट मी एट अदील अंडरस्कोर अज़र. दैट्स ADEEL अंडरस्कोर AZHAR. या एकदम चमकती हुई सुबह है जैसे कहते हैं ना, यानी सूरज ऐसा कोई आज सनराइज ऐसा है जैसा कि होता है आमतौर से चमक रहा है बिल्कुल समंदर इस वक्त सूरज ना. ह्यूमिडिटी भी आज थोड़ी सी नहीं बल्कि इट वाज एक्चुअली ऑन द वेरी हाई साइड और इसकी वजह से इतनी गर्मी सुबह में तो नहीं थी लेकिन दोपहर के आजकल जैसा कि सिलसिला चल रहा है ना काफी ज्यादा है सीन मुश्किल है. तो चैलेंज ग्रेट. बाकी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये कि आप लोग के मैसेजेस पे मैं नजर डाल रहा हूँ एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस अबाउट द T20 वर्ल्ड कप जो कि मैं कहूँगा कि अभी तक अपनी पूरी शान और शौकत के साथ तो अभी तक जलवा अफरोज नहीं हुआ है लेकिन अब सिर्फ चंद दिनों की बात और है एंड कितने द क्रेशेंडो इज बिल्डिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो वी विल टॉक अ लॉट अबाउट इन फैक्ट इन द कमिंग डेज. बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारा क्रिकेट फोकस्ड होगा. हम अपनी जॉय शेयर कर रहे होंगे आपस में, अपनी एग्नी और अपने पेन शेयर कर रहे होंगे और अपनी जो है वो पता नहीं कैसी यादें छोड़ के जाएगा. हर वर्ल्ड कप के साथ एक याद होती है ना मखसूस. आई वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस वर्ल्ड कप, द लास्ट वर्ल्ड कप. वो तो मैं इत्तेफाक से इंडिया में हुआ था तो मैं देखने भी गया था और वहाँ पे पाकिस्तान के दो मैचेस जो हैं वह नफ्स नफीस मैंने जो हैं वो जाके देखे भी थे और दो बड़े फ्रस्ट्रेटिंग मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले मैच थे. ऑस्ट्रेलिया तो चले उन्होंने हमें ऑलमोस्ट आउट क्लास कर दिया था बट न्यूजीलैंड वाला मैच रियली कांड. कल पता नहीं सारी वो यादें जो हैं अपने चंडीगढ़ मोहाली वाले ट्रिप की जो है वो मुझे आ रही थी. फारिग दिन था कल, इंतहाई फारिग दिन था. सीरियसली बैठा हुआ था. आई वॉज जस्ट सिटिंग एट होम एंड जस्ट डूइंग नथिंग एंड विद द रिमोट कंट्रोल इन माई हैंड और मोबाइल दूसरे हाथ में. आई वॉज जस्ट ट्वीटिंग अबाउट थिंग्स एंड वॉचिंग शाज़िब खानज़ादा एंड हमाद डिबेट एंड या पता नहीं क्या क्या किया. सीरियसली यार चलें जी प्रोग्राम में बहुत सारी आज बातें होंगी एंड या आई थिंक वी विल टॉक अबाउट अ बिट अबाउट साउथ कोरिया टुडे. देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट साउथ कोरिया. या वी विल टॉक अबाउट इंडिया. यस आज भारत का भी जिक्र होगा. इंडिया के बॉयकॉट कल्चर के हवाले से जरा सा हम बात कर रहे हैं. कोई हर चीज बॉयकॉट बॉयकॉट वाकई सीरियसली यार. अभी क्या रिसेंटली बॉयकॉट क्या कर रहे हैं उसकी भी हम बात करते हैं. और जनरली ये एक सोसाइटी है वहाँ पे या एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो कि ये बॉयकॉट वाला जो है वो सीन करती है. इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा सीन ये है कि चैंपियंस लीग के स्कोर्स भी हैं एंड ठीक. चलो जल्दी से मैसेज देखते हैं. पहला मैसेज आज का यूसुफ नवाब का हमारे पास आया और आदाब अर्ज़ भाई, थैंक यू सो मच. वासिफ महमूद साहब बहुत शुक्रिया. गोइंग टू गिलगित टू एंजॉय दिस सीजन. वाह वासिफ साहब वाह, बहुत अच्छी बात है जी. अभी तो वहाँ पे खिजां ऑटम फॉल अपने अरूज पर होगा और बहुत सारे इलाके जो हैं वो जर्दी माइल रंग इख्तियार कर लेंगे एंड आई थिंक इट विल लुक. डू शेयर योर पिक्चर्स. यस्टरडे हमारी एक लिसनर ने एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो है वो पास ऑन किया था अबाउट द पिक्चर्स दैट यू गाइस शेयर वेयर एवर यू आर इन पाकिस्तान और इस हैशटैग के साथ. सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन फॉलो दिस हैशटैग और वो तस्वीरें जो हैं वो देख भी सकते हैं. तो वो ट्विटर पे वो एक अच्छा पोस्ट इंस्टाग्राम पे एक क्वार्टर ऑफ अ मिलियन फॉलोअर वाली कोई जर्नलिस्ट थी जिनके मैंने ट्वीट अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया था एंड या सो वासिफ साहब नाउ दैट यू आर गोइंग इन दिस वंडरफुल सीजन देयर इन GB डू शेयर द पिक्चर्स. रहमान खलजी साहब थैंक यू. इन रेफरेंस टू लास्ट मंडेज मिसिंग आउट ऑन अटेंडेंस सस हाजरी लगाई लगी ना लगी रेस्ट अशोर्ड अप इन द नॉर्थ वन विल रिमेन ट्यून इन ऑलवेज होपफुली डायल. बड़ा डायलॉग तो नहीं मार दिया. नहीं नहीं सर आप लोगों की बस मोहब्बत है और मैं क्या कह सकता हूँ. बिल्कुल आप मैसेज ना करें, आपने बाद में तो मैसेज कर दिया था लेकिन आपका जो वो ट्रेडमार्क सिग्नेचर मैसेज होता है दैट वॉज इन देयर. बाकी एज फार एज यू लिसनिंग टू द शो इज कंसर्न, आई नो देयर आर सर्टेन लिसनर्स जो कि इतने आराम से शो को जो है ना वो छोड़ के नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले. आई नो दैट. ऑलराइट, देन वी हैव गॉट रियाज़ुर रहमान साहब. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस आर्टिकल. एज ऑलवेज एविएशन सर का सब्जेक्ट, और जहाँ पे जाहिर है मेरी और उनकी, मैं हमेशा ही बात बोल दूँ, मेरी और इनके शौक में ममासलत पाई जाती है. आपका तो बहरहाल पेशा है, हम शौकीन हैं इन चीज़ के हवाले से. लेकिन बताया ये है जी, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट अप्रोचेस, रियो डी जनीरो, माले. अरे माले की अप्रोच, I've seen that. I've been lucky enough. I've seen that. Venice, Cape Town, San Francisco, Genoa. Yeah, Genoa is in Italy, not Geneva. It's Genoa, London, Heathrow, Kigali. Nice to see an African city there. Two African cities, in fact. Nice, Sao Paulo, Innsbruck, that's in Austria. Queenstown, that's in New Zealand. Hong Kong, Santiago, and Las Vegas. Yaar, hamare, jaise kehte hai na ke, अपने स्कर्दू की अप्रोच कितनी खूबसूरत है. कितनी, जब भी स्कर्दू की अप्रोच की कोई वीडियो जो है जहाँ पे पोस्ट होती है वहाँ पे अचानक वायरल हो जाती है. वो इतना मज़ा आता है यार, मैं भी ना उसको रिपीट पर लगाता हूँ. आई जस्ट अज्यूम दैट इस A320 को जो है ना वो मैं ही उड़ा रहा हूँ, और ये मैं ये टर्न लिया, ये लिया. उफ यार. ओके जी, फजल फैजी साहब, थैंक यू सो मच सर. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज प्रैक्टिस मैच, बाबर शोड कंसिस्टेंसी, फखर लुक्ड इन गुड टच, बट प्रोफेसर एंड शुएब मलिक आर येट टू शो देयर एक्सपीरियंस. माशाल्लाह गोल्डन डक. यार मैं तो पता है उसमें हुआ क्या, प्रोफेसर का ना हुआ ये, मैं जब गया जैसी तो मैं किसी काम से अपनी सीट छोड़ के गया तो उस वक्त आउट हुआ फॉरन पे, प्रोफेसर आया एंड बाय द टाइम आई वॉज बैक प्रोफेसर वॉज गॉन. यार पता है अपने खिलाड़ी हैं यानी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं जो भी होता है, लेकिन पता नहीं यार दिल के अंदर कौन सा शैतान बैठा हुआ है एकदम. वो एक हंसी सी, एक आई डोंट नो, मैं इसको जॉय या खुशी तो मैं नहीं बोलूंगा, जाहिर हमारा मुल्क हार रहा होगा जैसे कहते हैं, बट आई डोंट नो मैन सीरियसली क्या कर रहे हैं हम लोग. बट बहरहाल सर देखिए, ये वार्म अप मैच था, इसको इतना सीरियस लेना नहीं है. आपको तो पता है कि 2012 के T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में तो हमने इंडिया को भी हरा दिया था. कामरान अकमल अगर मुझे याद पड़ रहा है उसने बड़ी कमाल इनिंग खेली थी और हमने काफी बड़ा टोटल जो है इंडिया का वो चेस कर लिया था. जीशान बेग साहब ने जो है वो तस्वीर शेयर की है, कल उन्होंने डॉक्टर कदीर की कब्र पे जो है वहां पे हाजिरी दी और फातिहा खानी जो है वो भी उन्होंने की. भाई जबरदस्त, गुड जेस्चर. H84 का ये कब्रिस्तान है इस्लामाबाद में. इसके अलावा अहमद फराज साहब जो हैं उनकी तस्फीन भी करीब ही हुई हुई है तो वहां पर भी आप गए. सो चलें, चल अल्लाह की मगफरत फरमाए. दैट्स अ नाइस जेस्चर. फहीम अली खान, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. सबको सलाम कहते हैं. थैंक सलाम अदील अंकल. असल में लास्ट टू वीक्स पहले मेरी यानी आयजा असेसमेंट हो रहे थे, अब अब्दुल्ला और इब्राहिम के असेसमेंट हो रहे हैं. आज दोनों के उर्दू का असेसमेंट है. थैंक यू. तो कब आखिर ये, कब इस भंवर से इम्तिहानों के असेसमेंट के आप लोग बाहर निकलने वाले हैं ये मुझे बताइए. मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आप लोगों को. तहसीन अमजद फ्रॉम जातली नियर गुजर खान कहते हैं, टुडे फील्स लाइक अ मंडे मॉर्निंग. है ना यार, आज भी मैं जब तैयार हो रहा था तो मुझे जो है ना वो मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग आ रही थी सीरियसली. और इट वॉज लाइक के अभी तो 5 दिन हैं, 5 दिन ऑफिस जाना है, फिर मुझे याद है आज तो वेंसडे है. बिकॉज यस्टरडे वाज सीरियसली, मैं तो जा रहा अब जुलूस वलूस वाला बंदा नहीं हूँ ना, यस्टरडे फॉर मी वाज एज बोरिंग एज अ संडे. एंड या आई मीन जस्ट डिड नथिंग. आई मीन व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ डे यस्टरडे. सीरियस, जिंदगी 24 घंटे कुछ भी नहीं किया यार. मोहम्मद बिन शान, हैप्पी बर्थडे जी. सैयदा रामीन जहरा फ्रॉम तुराब, कल्बे जहरा एंड फातिमा मासूमा. ऑलराइट, तो माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है घर में आप लोगों के. रमीन जहरा को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद है. ओके, इसके अलावा जो है ना वो एक और बर्थडे विश है, खतीजा की बर्थडे है आज. खतीजा बियाबानी. ऑलराइट खतीजा, हैप्पी बर्थडे टू यू यार. वैसे आपने नोट किया, मैं यार हर अक्टूबर में ये नोट कराता हूँ, अक्टूबर में शदीद बर्थडेज आती हैं, शदीद लाइक. अब यू गाइस कैन डू द मैथ्स व्हाटएवर इट इज, लेकिन है क्योंकि जैसा मैं अपने घर की बात करता हूँ ना, जब मेरी जो छोटी बहन है अभी प्रोग्राम सुन रही है, पता नहीं मुझे मुसलसल कह रही है अदील भाई नाते चल रही हैं, नाते हैं ये बेसिकली. इन्होंने कल कोशिश की होगी ट्यून इन चलाने की, वहाँ पे इन्होंने पॉज कर दिया होगा, वो कल की नाते जो है ना वो इस वक्त सुन रही हैं. तो 2 अक्टूबर को उनकी बर्थडे है, फिर उसके बाद जो है वो 11 अक्टूबर को हमारी जो जौजा हैं उनकी बर्थडे, फिर 17 को हमारे एक भांजे की होती है, फिर उसके बाद जो है वो 29 को हमारे एक और भांजे और 30 को हमारे साहबजादे की होती है. तो हमारे अपने ख़ानदान में, ये मेरे अपने इमीडिएट फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी बर्थडेज इन अक्टूबर. सो या देयर इट इज़. नजम साहब थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह लाहौर में मौजूद हैं जी, ऐवान अदल लाहौर में. अल्लाह ताला आपको जो है वो आपके मकासद में, नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन. डॉक्टर मोहम्मद अली रऊफ थैंक यू सर, डॉक्टर शैला थैंक यू, एम फैसल कुरैशी नहीं, सुमैया का मैसेज आया है, I guess I'm gonna be late for school today. Well, even if you're getting late, just drive safe. Okay. Vakar Ahmed कहते हैं desert. Rahim Yar Khan. Good morning. यार वैसे वाकई Rahim Yar Khan के इन सहराओं की तस्वीरें आपने शेयर की हैं सर. रोड तो बड़ी कमाल है, रोड बड़ी कमाल है. अभी हैश सनराइज विद अदील हैशटैग पे आप चेक कीजिए. माशाल्लाह जरा ये रोड चेक करके आइए आप. जुल्फी कहते हैं गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्रीटी कूलिश मॉर्निंग. ओमान गेव बांग्लादेश स्केयर. Had Oman held on their catches, the result might have been different. Yeah, I mean, Bangladesh did return favor by dropping a lot of catches. Lekin waqai agar Oman catches pakad leta aur wo Kashyap wagaira aur Jitendra ne jo catches chhode hain yaar, wo game jo hai na wo kafi different hoti aur Bangladesh unke haath paon phoolne shuru ho gaye the, bata raha hu main aapko. Okay, Jitarullah Khan sahab kehne se wo bakhair program se pehle neend na aaye, kya zabardast start. बहुत आला सर. रहमान खिलजी साहब ने भी इस गाने के हवाले से जो है वो कुछ अपना तफसीली नोट भेजा है, लेकिन उसको मैं फिलहाल नहीं पढ़ा बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाए काफी देर हो गई है. ब्रेक पे जाना है और फिर वापस आ दें, प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, सनराइज शो विद अदील में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. एंड ओके, नजीर का ये कहना है वी ऑल्सो हैव 5 बर्थडेज, शहीर, खतीजा, अब्बूज एंड नेफ्यू, खिजर एंड नीस मुनीबा. यार आई एम टेलिंग यू सीरियसली स्पीकिंग, अक्टूबर में है कोई गेम. अभी मेरे पास हसन का भी मैसेज आया, ही सेज माय सन रियान्स बर्थडे इज आल्सो ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर. अच्छा, इत्तेफाक की बात है, माय नेफ्यू जिसकी 29 अक्टूबर का, उसका नाम भी रियान ही है वैसे. अ काउंटडाउन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस मंथ. लॉट बेस्ट विशेस टू योर फैमिली एंड बेस्ट विशेस to your family as well. Okay, Peer Zahir Sahab, thank you so much sir. Good morning aapko. And then Imran Ahmed Zabardast ji, mashallah sahabzade ko meri taraf se bahut zyada good morning. Inka naam Mustafa hai mere khayal se, agar main galti pa na hu, if I am recalling it correctly. Oye hoye, messages kafi sare aa gaye hain, chaliye inko shamil kare. And Zulfi kehte hain real sign in time needs adjustment. Yaar seriously, rozana irada karta hu main ke jo hai na wo main jaldi sign in karunga, lekin pata nahi yaar kya musibat hai yaar. आज तो मैं गुस्से में आ गया अपने आप के, वही जब मैं निकल रहा था तो वही 7:03 हो रहे थे. आई वाज लाइक कम ऑन मैन, जबकि मैं आज सुबह, यू वुडंट बिलीव, आई हैव बीन अप सिंस वेरी अर्ली, बट आई डोंट नो मैन व्हाट इज रॉन्ग. अच्छा जी, काशिफ बारी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच सर. हमना मायर एंड मनहा, टुडे इज माय उर्दू एंड जीके असेसमेंट. मनहा यार, जीके, यू नो आई यूज्ड टू टीच जीके एट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स. क्या सब्जेक्ट है, सब पढ़ा दो इसमें जीके के नाम पे सब कुछ. मैं तो पहले जुमला ही होता था, आई हैव गॉट द इजीएस्ट थिंग और परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच इन द वर्ल्ड. आई मीन यू कैन टीच एनीथिंग इन द नेम ऑफ जनरल नॉलेज. ऑलराइट, सारा सफा एंड सुमैया, वी आर ऑन द वे टू स्कूल, दैट इज ग्रेट. मोहम्मद वकार थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी. आसिम मंसूर साहब, ओहो यू आर मोजम्बिक में, ऑफ कोर्स आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. मैं ओहो इसलिए बोला कि मैं आज सुबह जो है ना वो मोजम्बिक के हवाले से एक न्यूज फीचर जो है ना वो सुन रहा था कि किस तरह मोजम्बिक बेचारे के साथ जो है ना वो एक बैंक ने जो है ना वो हैंड किया है. इस पर हम बात करते हैं आगे चल के जरा प्रोग्राम में, अगर मुझे टाइम मिलता है. ओके जी, हसनैन आला साहब कहते हैं माय फर्स्ट ट्वीट विद दिस हैशटैग, वेलकम ब्रदर. ओ या, मैं यही सोच रहा था आज ट्वीट इतने सारे आए हैं, वेयर आर वी ट्रेंडिंग. सो वी आर ऑलरेडी ट्रेंडिंग एट नंबर 2 इन पाकिस्तान, दैट इज सो कूल. वसीम ताहिर साहब थैंक यू, गुड मॉर्निंग. राव रफाकत फ्रॉम नया नाजमाबाद, गुड मॉर्निंग कहते हैं. और यूसुफ नवाब कहते हैं कि एक दिन मौरख लिखेगा, लिखने दो, लिखने लिखते रो देगा कि एक स्टूडेंट की क्लास ऐसी भी थी जिसमें स्टूडेंट तो वक्त से पहले आते थे मगर प्रोफेसर लेट हो जाया करता था. यस यू आर राइट, समझ रहा हूँ मैं किस तरह इशारा है तुम्हारा. ऐसन इकबाल साहब, इट लुक्स लाइक अ प्रॉब्लम ऑन द स्ट्रीमिंग, अनाथ इज ऑन रिपीट रिकॉर्डिंग देयर, सेम इज ऑन समा एफएम लिंक, व्हिच वन इज वर्किंग, आर यू डूइंग द शो, ओ माय गॉड. कुछ आज सिचुएशन गंभीर है. तो हमारी अभी हमारी जो बहन है उनका भी फिर उनको समझाया, उन्होंने रेडियो गार्डन पर अभी इंस्टॉल किया और कह नहीं रेडियो गार्डन सही चल रहा है, ट्यून इन पे जो है ना वो नाच चले जा रही है. तो हमारी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग जो कि ट्यून इन पे कर रहा है वहां पे इस वक्त जो है ना वो नाच चल रही है और दिस इज द प्रॉब्लम. ओके जी, उसामा फजल कहते हैं अदील भाई वी विल ऑल्सो विजिट स्कर्दू दिस वीकेंड. वाह यार जबरदस्त पार्टी सीन ऑन है भाई, तस्वीरें भेजना मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ विद द हैशटैग सो दैट वी कैन सी. उबैदुल्ला जान अहमद जई थैंक यू सो मच. उमेर दीवान एंड रियान थैंक यू. आमिर रियाज कहते हैं नथिया गली लास्ट वीक एंड आई वॉज देयर इन द एल्पाइन रिजॉर्ट. दिस इज सच ए ब्यूटिफुल पिक्चर मैन, इफ समबडी टेल्स मी दिस इज एक्चुअली इन्सब्रुक इन Austria, I would have believed on that. All right, Huram कहते हैं there is a regular disruption in your transmission at times, complete silence or repetition of a few words. Better to throw this equipment out of the window. Oh my God, Huram भाई तो काफी गुस्से में हैं यार. Sir, थोड़ा सा सबर कर लें इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतजार इंशाल्लाह, we'll fix the things sir, we have fixed the things. अगर आपकी आपकी प्रॉब्लम फेस करते हैं, why don't we start documenting these things? आप document कर लें इस particular time पे. Just send me a little tweet, guys. I'll try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको फिक्स करने की. ओके, तो मैं थोड़ी देर पहले जो है ना वो बात कर रहा था इंडिया के कैंसिल, इंडिया के बायकॉट कल्चर के हवाले से. मीन इंडिया में जो है ना वो बायकॉट कल्चर का बड़ा रुझान है, खासतौर से इनके जो राइट विंग हिंदू इंतहा पसंद जमाते हैं वो हर चीज से ऑफेंड हो जाती है, हर चीज का बॉयकॉट. जैसे पाकिस्तान में भी मैं सोच रहा था पाकिस्तान के बॉयकॉट कल्चर का क्या हाल है. तो हमारा बॉयकॉट है फ्रांस का बॉयकॉट कर दो, डेनमार्क का बॉयकॉट कर दो, वो हम करते वरते नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारा हमारा बॉयकॉट कल्चर यहीं तक है. और उसके अलावा कोई मुझे कोई मशहूर बॉयकॉट याद नहीं आ रहा कोई पाकिस्तानी, मुझे याद दिलाएं प्लीज जो हम पाकिस्तानियों ने बॉयकॉट किया होगा जी. सो एक तो हमें जबरदस्ती बायकॉट खुद करवा दिया ना गवर्नमेंट ने, यूट्यूब बैन कर दिया. हम जी हमारा तशख्खुस हमें इजाजत नहीं देता कि हम यूट्यूब देखें. याद है रिमेंबर दोस्त थिंग, एक मुझे याद है कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी जो मशहूर थी MQM एक जमाने में, उन्होंने 1990 के अवाइल में जो है ना वो जंग अखबार का बॉयकॉट किया था. आई रिमेंबर हर जगह पोस्टर लगा दिए थे जंग का बॉयकॉट. ओके जी, सो बट इंडिया में जो है ना ये बॉयकॉट कल्चर बड़ा कॉमन हो गया. अच्छा अभी जो एक बॉयकॉट अभी है ना कि कभी फलाना प्रोडक्ट शाहरुख खान को बॉयकॉट कर दो, तो बाइजू को बॉयकॉट कर दो, तो नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट कर दो. यस, बीच में वो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने ये भी कैंपेन, तो हर थोड़े महीनों में एक बॉयकॉट. अब जो एक बॉयकॉट रिसेंटली पिछले दो दिन से हो रहा है दैट इज इंडिया में एक ब्रांड है, फैशन ब्रांड है जिसका नाम है फैब इंडिया. ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर हर्ड अबाउट दिस ब्रांड. इट हैज गॉट अ ट्विटर हैंडल. और हुआ ये, अच्छा हुआ ये, अच्छा इंडिया में आपको पता ना दिस इज द फेस्टिवल सीजन. अभी नवरात्रि और दशहरा वगैरह हुआ है, और दशहरा के बाद आपको पता है कि रावण की लंका ढाने के बाद भगवान राम जो हैं वो अयोध्या वापस गए थे, और उनके अयोध्या वापस आने को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्टिवल मार्क किया जाता है. बल्कि आपको पता है ना ये भगवान राम जो हैं जब वो वापस आए थे अपने आबाई शहर अयोध्या, तो वहाँ के लोगों ने उनका वेलकम किया था पटाखे और फुलझड़ियों से, जिसको जिसकी याद में दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है. सो अब दिवाली सीजन वहाँ पे आने वाला है, और इंडिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिव सीजन होता है दैट इज दी दिवाली सीजन. अब क्या है, अब दिवाली के हवाले से फैब इंडिया ने जो है ना अपनी एक कैंपेन लॉन्च की. अच्छा उन्होंने कैंपेन जो लॉन्च की उसका नाम उन्होंने रखा जश्न रिवाज. अच्छा एक तो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये भी है ना कि ये रिवाज बेसिकली वर्ड था. इंडिया में आपको पता है इजाज क्यों नहीं हो जाता, आई डोंट नो. मैं अक्सर ये सोचता हूँ क्या इंडिया में जूम मीटिंग को जूम मीटिंग कहते हैं, ये भी एक सवाल बनता है. तो जश्न रिवाज उनकी कैंपेन का नाम था जिसको उन्होंने ऑफकोर्स अपने इंडियन स्टाइल में जश्न रिवाज लिख दिया. अच्छा उसमें दिखाया है कि कोई चार खवातीन जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत से लिबास में मलबूस हैं सुर्ख रंग के, पीछे एक हजरत भी खड़े हुए हैं जो भी सुर्ख रंग और उस पर कुछ गोल्डन जरी वगैरह का काम हुआ हुआ है. सो इट्स अपेरेंटली इट्स अ नाइस पिक्चर, इट डिपिक्स द कल्चर, द इंडियन कल्चर, एंड टेल्स यू अबाउट द फेस्टिविटीज आर देयर. पीछे दिए जल रहे हैं, लाइट जल रही है, एंड दिवाली आने वाली है. लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने कहा कि फैब इंडिया का करो बॉयकॉट, और बॉयकॉट इसलिए करो बिकॉज उन्होंने जो अपनी कैंपेन को नाम दिया है वो उर्दू में क्यों दिया है, उर्दू में जश्न रिवाज. मेरे ख्याल से आप कह दीजिए फारसी में किया है, लेकिन क्योंकि जश्न रिवाज उर्दू के भी अल्फाज हैं तो हम चलें कह देते हैं कि ये उर्दू के अल्फाज हैं. तो वही कहते हैं कि एक हिंदू जो कि फेस्टिवल है उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ज़ाहिर है मुसलमानों की ज़बान में, हिंदू और मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी, आपकी जो पाकिस्तान मूवमेंट भी थी, उर्दू वाज़ आर आइडेंटिटी. ठीक है जी, सो वहां पे जो है ना बस अब बॉयकॉट वाला सीन हो गया जी. बॉयकॉट करो जी, इन्होंने किस तरह जो है ना वो यूज किया. बिकॉज सर हमें ये बात पता है कि ये जो जो हिंदुत्व जो राइट विंग हिंदू फॉलोअर्स हैं, हिंदुइज्म के जो फॉलोअर हैं, मोदी के जो फैन बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ये एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को बाहर करके रखना चाहते हैं. और इसमें जो है वो जाहिर है हमने इसकी मैनिफेस्टेशन हम हर थोड़े दिनों में देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जलील कर रहे होते हैं. यूपी में, बिहार में, अभी तेलंगाना से नहीं सदर्न इंडियन स्टेट कोई थी जहाँ से ये वीडियो आई है, जो बेंगलोर वाली स्टेट है, कर्नाटका, वहाँ से ये वीडियो आई कि जी एक मुसलमान की जो है ना वो मुर्गी की दुकान, पोल्ट्री शॉप को जो है ना तहस नहस कर दिया. इसलिए तहस नहस कर दिया बिकॉज हिंदुओं का एक जुलूस गुजर रहा था और उस बंदे ने उसके लिए अपनी दुकान बंद नहीं की थी. सो इस तरह मुसलमानों की हैरेसमेंट वहाँ पर चल रही है. और जाहिर है उर्दू जबान के साथ इनको और ही मसला है. बल्कि आप अगर नोट करें तो संस्कृतराइजेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो पिछले कोई 10-12 साल में इंडिया में हुई है, दैट्स माइंड बॉगलिंग. मुझे याद है हिंदी में, हमें याद है ना इंडियन फिल्म में, आई मीन वी ऑलवेज यूज टू से यार इंडियन फिल्म है, एक्चुअली उर्दू फिल्में होती हैं. बिकॉज वो जो जबान यूज की जाती है वो ऐसी जबान है जो कि नॉर्थ इंडिया में जनरली एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और उसमें चंद एक अल्फाज बिल्कुल हिंदी के या संस्कृत के आ जाया करते थे. बट जनरली, बल्कि अगर आपको याद हो, इवन जो इंतहाई हिंदुइज्म से करीब रहने वाले लोग, राजश्री प्रोडक्शन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, ये लोग भी जो फिल्में बनाते थे इसमें फिल्म का नाम उर्दू में भी लिखा हुआ था. जब फिल्म स्टार्ट हुआ करती थी उर्दू में नाम लिखा हुआ होता था. लेकिन अगर आप नोट करें तो अब जो इंडियन फिल्में, खैर मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन ये कोई पिछले 10-15 साल से ये चीज़ हो रही है कि जिसमें वो उर्दू से लिखने वाला जो सीन है ना उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिया. सो दे आर एक्चुअली टेकिंग इट ऑफ, लाइक ऑफ ऑफ द सीन, कि यार ये ज़रूरी नहीं है लिखना उर्दू में फिल्म का नाम. आपने हिंदी में लिख दिया, आपने इंग्लिश में लिख दिया, और यानी कि रोमनाइज हिंदी में लिख दिया, आपने नाम काफ़ी है, नाउ यू डोंट नीड टू राइट दैट इन उर्दू. इसके अलावा मोदी जो लैंग्वेज बोलता है, बल्कि हमारे दोस्त माथुर जी तो अक्सर ये बोलते हैं, अबे भाई क्या बोल रहा होता है, मेरे भी समझ में नहीं आता. वो इतनी शुद्ध हिंदी जो है वो बोल रहा होता है कि कोई समझ में नहीं है. एक पर्टिकुलर मार्केट है जो कि एक्चुअली डिसाइफर कर पाती है कि मोदी जी एक्चुअली यहाँ पे बोल क्या रहे हैं. गुड ऑन देम, अपनी कल्चर है, अपना वो है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आप अपनी जबान, मेरा बड़ा दिल चाहता है कभी कभार मैं खालिस उर्दू बोलूं, लेकिन मैं खालिस उर्दू इस नीयत के साथ बोलूं कि मैं किसी माइनॉरिटी जबान बोलने वाले को टॉन्ट करना चाह रहा हूँ या उसकी जबान को दबाना चाहता हूँ या सप्रेस करना चाहता हूँ. मसला वहाँ पर है. 90s में मुझे याद है जी टीवी में आशुतोष राणा आके जो है वो बैठे हुए होते थे और इंतहाई शुद्ध हिंदी भाषा में जो है वो अपना प्रोग्राम कर रहे होते थे, तो हम हैरान रह जाया करते थे, अभी क्या बोल रहा है यार ये तो कुछ. उस वक्त वो एक एक्सेप्शन हुआ करता था, बट नाउ दिस इज बिकम द नॉर्म. सो द हेट फॉर हिंदू इज देयर फॉर द जो राइट विंग हिंदू है, बिकॉज मुसलमानों की ये ज़बान है, which is why this boycott Fab India thing is on these days. अगर आप इस हवाले से मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे जाके #boycottfabindia one word लिखेंगे, so you can read about that. उन बेचारे Fab India ने जी अपनी कैंपेन जो है ना वो तो वापस ले ली है. और तेजस्वी सूर्या एक लीडर है इंतहा पसंद बीजेपी का, उसका मैं ये ट्वीट पढ़ रहा था, दीपावली इज नॉट जश्न-ए-रिवाज, उसने जैश-ए-रिवाज, जैश मोहम्मद से इतने वो, एनीवे, दिस डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ एब्राहमाइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल डिपिक्टिंग मॉडल विदाउट ट्रेडिशनल हिंदू अटायर मस्ट बी कॉल्ड आउट एंड ब्रांड्स लाइक फैब इंडिया मस्ट फेस इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर सच डिलिबरेट मिसएडवेंचर. वाओ, ऑलराइट, ये चलते हैं, आपको अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग टू द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. Sunrise Show with Adil. This is on Mira FM 107.4. Thank you so much. And those in the program, tune in. Kia, mashallah. Abhi Dawn.com maine khola hai aur corona ke girte hue graph ki yahan pe shakal nazar aa rahi hai. Mashallah, yaar ye number to 500 cases pe aa gaya hai on daily basis and 1.5-1.6% positivity ratio pe mashallah cheeze stand. So yeah, that's pretty cool. Alhamdulillah, Allah has been very kind. Okay, jaldi se aam khabron pe nazar dalte hain. Tamam portals pe, news portals pe jo sabse aam khabar hai wo kal bharti behriya ki janib se पाकिस्तान की जानब अग्रेशन का मुजाहरा किया गया, लेकिन पाकिस्तान की नेवी ने जो है वो भारतीय सबमरीन का जो है वो रुख मोड़ दिया. नेवी वार्ड्स ऑफ इंडियन सबमरीन फ्रॉम एंटरिंग पाकिस्तानी वाटर, कहना है ISPR का. ISPR says October 16 incident was the third time an Indian submarine was detected and tracked by Pakistani Navy's patrol aircraft. So well done to Pakistan Navy. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या खबर है, और ये खबर है IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं। ज़ाहिर है शहबाज राणा साहब तो एक्सप्रेस वाले पहले ही खबर दे चुके हैं कि मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं। 4 दिन पहले वो ये बोल चुके थे, जिसका आपको पता है कि बड़ा नेगेटिव वाइब्स जो है वो गई हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद से गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो एक्टिव में आई है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी एक लेसन है कि इन इफ यू वांट टू बी वन अप, यू हैव टू बी वन अप, यू हैव टू विन द कम्युनिकेशन बैटल व्हिच दे डोंट सीम टू बी राइट नाउ। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कल बयान आया, IMF से मुज़ाकरात के बाद कौम को खुशखबरी देंगे। मुज़ाकरात आर स्टिल ऑन गोइंग, कहते ये हैं कि जी कल IMF के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से काफ़ी पॉजिटिव जो है वो खबर आई, और मेटस ग्लोबल ने उसको जो है वो रिपोर्ट भी किया है। सो लेट्स सी क्या होता है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा रियासत मदीना में जो जर्नैल अच्छी कारकर्दगी दिखाता था वो ऊपर आता था। उनके इस बयान को जो है लोगों ने काफ़ी मानी खेज करार दिया है। अब आप इसको जिस तरह इंटरप्रेट करना चाहें आप कर सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल के लिए आज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज पेश की जाएगी। इनकी अपनी पार्टी बाप और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो इनके हिमायती पार्टी है उनके कुछ मेम्बरान इनके खिलाफ हो चुके हैं। देखते हैं जी जाम कमाल इसको सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। मरियम नवाज का बयान आया, कहती हैं आवाम फाकों से मर रहे हैं और बेस हुकुमरान रियासत मदीना की बात कर रहा है। ओके, ISI सरबरा का तकर्रुर, समरी वजीर आजम हाउस पहुंच गई है। ये जराए का, बल्कि अब तो काफ़ी मुत्तफिक अलह जराए का ये कहना है कि बाकायदा समरी आ गई है। मुमकिन यही है कि आज ये साइन ऑफ भी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो जो एक अब पता नहीं, खैर कुछ नहीं कह सकते कि ये मामला या वो जो एक फालतू का एक पाकिस्तान में क्राइसिस क्रिएट हुआ था उसके में जो है वो क्या हुआ है। शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 74 साल में ये बदतरीन हुकूमत आई है। नहीं, बच्चे बच्चे को खैर 74 साल की मेमोरीज तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बहरहाल हुकूमत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल क्राइसिस है। और हुकूमत जिस तरह के ट्वीट्स कर रही है, खान साहब पता नहीं, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, अब तो माफ़ कर दें यार, पता नहीं इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने कोई पोस्ट कल लगाया हुआ था रात में। यार यार कुछ ना बोलें, Just stay quiet right now. लोगों के लिए हमदर्दी के दो अल्फाज बोल दें काफी होगा, लेकिन नहीं भाई क्या करें। अवामी शिकायत पर सिविल एविएशन का मुल्क की कौमी और 3 निजी एयरलाइनों के खिलाफ नोटिस, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर यह देख लिया होगा, काफी इस डिले। एक एयरलाइन तो ऐसी है जिसकी तकरीबन आधी फ्लाइट जो है वो या तो डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। दिस इज अ वेरी शेमफुल नंबर। चले जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं हम आपसे इनके बाद। सुनते रहिए सनराइज शो विद मी अदील अजर, एंड अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, दैट्स वन वर्ड। वेलकम बैक गाइस, द सनराइज शो विद मी अदील अजर एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। और भाई देखें, बहुत सारे दोस्त मुझसे प्लीज नाराज मत होइएगा, वैसे हमारे दोस्त सईद अंजुम खोकर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए नाराज तो मुझे पता नहीं होने वाले। लेकिन देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो हैशटैग है प्रोग्राम का वो इस्तेमाल करें अपने मैसेज के लिए, बिकॉज मेरे लिए ना फिर हम दो फिर मेरे लिए ना पेजेस फॉलो करना जरा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेपुटेशन एंड ऑल स्टफ, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मेरा नाम भी लिखते हैं और हैशटैग भी लिखते हैं। कुछ दोस्त हमारे आदि हो गए जो अब सिर्फ हैशटैग के साथ जो है ना ट्वीट कर रहे हैं प्रोग्राम में, विच इज द ऑब्जेक्टिव, द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे @adil_azhar, मेरा ट्विटर हैंडल हाजिर है। हाउएवर मैं ये रिकमेंड करूंगा, जैसे खोकर साहब भी कह रहे थे यार आजकल आप मैसेज नहीं पढ़ रहे मेरा, आप इस वजह से नहीं पढ़ रहा सर बिकॉज वो फिर मेरे नाम से आ रहा है, हैशटैग के साथ नहीं आ रहा, सो इट्स बीइंग मिस्ड आउट। बहरहाल खोकर साहब कहना क्या चाह रहे थे भाई, कहते हैं हमारे साहबजादे और आपके लिसनर तैमूर असलम की बर्थडे जो है वो 18 अक्टूबर को थी, 18 अक्टूबर को गुजरी है, यानी परसों उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। भाई हैप्पी बर्थडे तैमूर, बिलेटेड वन मैन, एंड आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम, इजंट इट? ऑलराइट, ग्रेट। चलो जी, अब ऐसा करते हैं जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं। सो आई रियली कांट से दैट द T20 वर्ल्ड कप इज इन फुल स्विंग, बट यस आई थिंक एक टीम के बारे में आप जरूर कह सकते हैं कि बिल्कुल उनके जो है ना वो ऑलमोस्ट दे थॉट फॉर अ मोमेंट दैट द एंड इज नियर। आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। आई मीन बांग्लादेश जिस ग्रुप में था उसके बारे में तो जाहिर है आप भी सोचेंगे कि यार इनके लिए क्या मसला, लाइक इनके ग्रुप में स्कॉटलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, ओमान है। ओमान और पापुआ न्यू गिनी तो कहीं लाई नहीं करते, स्कॉटलैंड को क्या फाइट पुट अप करेगा। लेकिन बहरहाल जी बांग्लादेश यस्टरडे हैड अ स्केयर, अ बिग टाइम स्केयर, इवन दो दे मैनेज टू विन दैट गेम बाय द एंड इजीली बाय 26 रन्स। लेकिन एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश वॉज स्ट्रगलिंग और सो हुआ क्या, पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने जो है वो बनाए 153 रन्स। उनकी जानिब से मोहम्मद नईम ने 64 रन बनाए 50 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे. और इनके जो सीनियर वेटरन खिलाड़ी है कहना पड़ेगा, अब तो यानी बचपन से ही देख रहे हैं, स्टिल 34 शकीबुल हसन, 29 गेंदों पर उन्होंने जब 42 रन बनाए जिसमें 6 चौके शामिल थे. इसके अलावा कोई और खिलाड़ी जो ना, महमूद अल्लाह ने 17 रन बनाए लेकिन फिर कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई. सो इट वॉज एन अप एंड डाउन इनिंग, दे वर स्ट्रगलिंग इनिशियली, देन देर वॉज अ गुड फेज जिस वक्त नईम और शकीब बैटिंग कर रहे थे. बट उमान जो है वो कल जिस चीज को ज्यादा ब्लेम कर रहा होगा वो उनकी कैचिंग थी, वेरी वेरी पुअर कैचिंग. आई रिमेम्बर देम ड्रॉपिंग 3 कैचेस and those were very easy catches. I mean, आसान catches, जिसे कहते हैं regulation chances जिन्हें कहा जाता है. कोई ऐसा नहीं था कि जी dive मारी और जी full stretch dive मारी और सीधे हाथ से गेंद लग के pop out हो गई या fingers को touch करती हुई चली गई. Those were easy catches यार. लेकिन बाहर अगर वो catches पकड़ लेते, नईम का catches catch अगर खास तौर से पकड़ लेते तो ये तो 125 runs की कहानी बांग्लादेश की लग रही थी. बहरहाल जी, 3 विकेटें हासिल की बिलाल खान ने, कलीमुल्ला ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, फयाज बट जो है उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की. जवाब में ओमान की टीम, यस एज आई सेड एट वन पॉइंट इन टाइम, जिस वक्त जितेंद्र सिंह और कश्यप परचप पति खेल रहे थे और उसके बाद कप्तान जीशान महमूद भी आए, कुछ लग ये रहा था कि कुछ मुकाबले के मूड में लग रही है. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मुस्तफीजुर रहमान एंड शकीबुल हसन, दे वर इन एक्शन एंड आई थिंक दे डिड नॉट लेट ओमान स्कोर अ लॉट ऑफ रन इन द एंड. सो बांग्लादेश ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है. ग्रुप बी में इस वक्त भी जो है वो बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद है. स्कॉटलैंड अपने 2 मैचेस में से दोनों जीतने में कामयाब हुआ है. कल उन्होंने दोपहर में जो मैच हुआ उसमें पापुआ न्यू गिनी को बासानी उन्होंने शिकस्त दी. लेकिन ओमान अभी एक मैच जीता हुआ है जो कि उन्होंने पीएनजी के खिलाफ जीता था, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है दैट इज डूइंग प्रीटी वेल. अच्छा, अब यहाँ पे कहानी क्या आ गई, आपको पता है अब एक एक मैच खेलना इन सब टीमों का रह गया है. ओमान का मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ होना है और अगर ओमान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है और वो स्कॉटलैंड को शिकस्त दे देते हैं, जो कि काफी हद तक पॉसिबल है, इट कुड बी वेरी वेरी टफ फॉर बांग्लादेश. हाउएवर बांग्लादेश दोपहर में कल मैच खेल रहा है पीएनजी के खिलाफ. नॉट जस्ट दे हैव टू विन, बल्कि दे हैव टू विन बिग. सो फॉर देम इट्स सिंपल, टॉस जीतो, पुट अप अ मैसिव स्कोर ऑन द बोर्ड एंड देन गेट पी एन जी आउट चीपली. थिंक ये हो सकता है, पी एन जी बेचारे क्या कर लेंगे इस चीज के हवाले से. दूसरी जाने फिर इट विल बी अ 2 हॉर्स रेस बिटवीन ओमान एंड स्कॉटलैंड. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो बहरहाल आज के मैचेस के हवाले से बात करते चलें. आज दोपहर का तो मैच है, 3 बजे पाकिस्तान टाइम नमीबिया का मुकाबला होने वाला है नेदरलैंड्स के साथ. ऑलराइट, ये दोनों टीमें अपने पहले मैचेस जो है वो हार चुकी हैं और आज शाम में अच्छा मैच होने की उम्मीद है. श्रीलंका का मुकाबला होगा आयरलैंड के साथ. So, yeah. All right, जी, पाकिस्तान आज अपने वार्म अप मैच, दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच पाकिस्तान जो खेल रहा है उसमें एक्शन में आपको नजर आएगा. आज पाकिस्तान जो है वो स्वीट अफ्रीका के खिलाफ एक्शन में होगा. पाकिस्तान ने अपने पहले वार्म अप मैच में बा आसानी शिकस्त दी थी. पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टीम को, द डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम, पहले तो पाकिस्तान ने उनको बॉलिंग में रिस्ट्रिक्ट किया और बैटिंग में थैंक्स टू फखर एंड थैंक्स टू बॉबी द किंग येट अगेन अमंग द रन्स, पाकिस्तान ये मैच बा आसानी जीतने में भी कामयाब हुआ. कितने 14-15 ओवर से पाकिस्तान ने टोटल चेस भी कर लिया. आज 3 वार्म अप, बल्कि आज 4 वार्म अप मैचेस जो हैं वो खेले जाने वाले हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंडिया के साथ होगा. इंडिया ने आपने देखा क्या जबरदस्त बैटिंग की अपने पहले वार्म अप गेम में, इंग्लैंड को उन्होंने जो है वो शिकस्त दी. इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा. अफगानिस्तान विल बी इन एक्शन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड एज आई सेड शाम को 7 बजे पाकिस्तान का मुकाबला होना है साउथ अफ्रीका के साथ. सो या बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम. आई मीन ऑफ कोर्स ज्यादा दिल पे जो है ना वो लेने की जरूरत नहीं होती है वार्म अप के रिजल्ट्स, लेकिन फिर भी आई मीन इट इट हेल्प्स यू बिल्ड द मोमेंटम एटलीस्ट. और याद रहे पाकिस्तान का तो पहला मैच ही इतना क्रिटिकल मैच है कि अब जो है ना वो इस पे क्या कह सकते हैं यार. जी चलें जी, इसके अलावा आज सुबह में, वैसे आज सुबह में ना माइकल वॉन का मैं बयान, माइकल वॉन को ना बड़ी आदत है जैसे कहते हैं कि पंगे लेने की इंडियंस के साथ, बहुत ज्यादा आदत है पंगे लेने की. अभी उसने क्या बोला, उसने ना कल बयान दिया, वो कहते हैं यार आई रियली डोंट नो हाउ इंडिया गेट द फेवरेट्स टैग. और वो ये कहता है कि दे कैन सी इंग्लैंड दे आर द मोस्ट फेवरेट टू विन द T20 वर्ल्ड कप. वो कहते हैं आई डोंट नो हाउ इंडिया गेट्स द फेवरेट टैग. कहते हैं 2 टीमें दैट कैन एक्चुअली चैलेंज आर वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान. And New Zealand has got a number of decent players. So, yeah, I don't know. यार ये इसकी बातें ना गलत ही साबित होती हैं. अब ये Indians are going to troll him फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा और फिर इंडियंस आर गोइंग टू ट्रोल हिम अगेन. तो मत बोला करे यार, ये इस आदमी की जबान के साथ मसला, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी जीत जाए भाई, हिंदुस्तान ना जीते, बड़ी मुसीबत कर देते हैं आपको पता है. लेकिन खैर चलें जी, उनका वर्ल्ड कप है आपको पता है ना, दिस दे वर द ओरिजिनल होस्ट पिछली बार जब उन्होंने, वो छोड़ दें, चलें यार रहने दें, आगे बढ़ते हैं. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है दैट हम जो है ना वो अच्छा, एक जाते जाते एक और खबर बता चलूँ ना ओलंपिक्स के हवाले से. ओलंपिक्स आप भी कहेंगे कौन से ओलंपिक्स की बात हो रही है भाई, विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, बताते चले आपको. और अरे यार मुझे चैंपियंस लीग की भी तो बात करनी है, वो मैं सोच रहा था कुछ कुछ फंस रहा है दिमाग में, कुछ अटक रहा है कुछ. ओके चैंपियंस लीग के ओलंपिक्स आपको बताते चले. ओलंपिक की मशाल आपको पता है ग्रीस में रोशन होती है और ग्रीस से जो है ना वो फिर हैंड ओवर कर दी जाती है मेजबान मुल्क को, फिर वो मेजबान मुल्क के जो है ना वो चक्कर लगाती है और बिलाखिर इसके वेन्यू पर जो है वो पहुंचती है और वहां पे फिर ओलंपिक के खेलों की जो है वो इफ्तिताही तकरीब होती है. तो 2022 के जो ये ओलंपिक गेम्स हैं ये फरवरी के महीने में होने वाले हैं बीजिंग चाइना में. और चाइना इससे पहले आपको पता है बहुत ही कामयाबी के साथ समर ओलंपिक होस्ट कर चुका है 2008 में. अब वो कामयाबी के साथ जो है वो विंटर ओलंपिक गेम्स भी होस्ट करेंगे. तो अभी क्या हुआ है कि कल जो है ओलंपिक की शमा जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है फ्रॉम द होस्ट ग्रीस टू चाइना. अब ये चाइना जाएगी और वहां पे जाके ये पूरे मुल्क के चक्कर होकर जाए. उनको अब कोविड का दायरे हुआ है, एसओपीस का ख्याल है, चाइना इंटरनली तो पूरा ही खुला हुआ है तो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. लेकिन जाहिर है चाइना को जब भी बात आता है आपको पता है पॉलिटिकली इनको बहुत टारगेट किया जाता है, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, फलाने लोग इनके साथ, शिनजियांग मुसलमानों की मिट्टी पलीत कर देंगे वेस्ट वाले. लेकिन जब शिनजियांग की बात आती है ना, पता नहीं ऐसी उनकी मुसलमानों के लिए मोहब्बत जाग जाती है बिकॉज मामला चाइना का है. सो बहरहाल कल मैं देख रहा था कि इस पर भी जो है ना रोना धोना मचाया हुआ है वेस्ट में कि जी चाइना पे बॉयकॉट किया जाए, ये भी एक कैंपेन चल रही है बॉयकॉट ओलंपिक गेम्स. मेरा नहीं ख्याल कर वो बॉयकॉट करेगा शरीक, एंड आई एम प्रीटी श्योर चाइनीज आर गोइंग टू पुट अप एन अमेजिंग शो. विंटर ओलंपिक्स की अपनी एक खास बात होती है, अपनी खूबसूरती, अपना हुस्न होता है. ये चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद मी अदील. और आपके बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं यार, तो क्या किया जाए, कुछ बातें भी करनी है प्रोग्राम में. एज आई सेड आई नीड टू टॉक अबाउट साउथ कोरिया, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम साउथ कोरिया, आई वांट टू इंक्लूड दैट. इट इज अबाउट द स्क्विड गेम्स और या इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेनन है ये सीरीज. आई टेक दैट इन अ बिट. वी कैन टॉक अ बिट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप एज वेल बिकॉज उनके करीबी साथी काफी मुश्किलात का शिकार हैं. इफ आई गेट द टाइम तो फिर मैं उसकी बात करूंगा. सेकेंडली बिल्कुल अभी हसन ने मैसेज किया है मुझे अबाउट दिस हमाद अजहर एंड शाजीब खान ज़्यादा डुएल जो हमने परसों टेलीविजन पे देखा, जिसपे काफी ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे खास तौर से बातचीत होती रही. सो देखते हैं क्या क्या चीजें, बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, पता नहीं कितनी चीजें प्रोग्राम में. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल एज वेल बिकॉज चाइना जब भी कोई डिफेंस के सदा पे जो है वो जबरदस्त काम करता है तो जरा तकलीफ यहाँ पर भी होती है पता नहीं क्यों लेकिन खैर एनीवे बट पता नहीं ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मेरी ख्याल है जो मैं प्रोग्राम में बात कर सकूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा. अभी फिलहाल मैं जल्दी से आप लोगों के मैसेज एक्नॉलेज करता चलूं. हैदर अली थैंक यू सो मच. अदनान मुख्तार जो है सर पाकिस्तान टीम का फुल नेगेटिव वाइब्स आप दे रहे हैं आजकल, वी वॉन्ट टू हैव पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू. अच्छा यार मुझे बताया ना, ये मेरे पास एक वीकेंड पे भी एक मैसेज आया था, हमारे बहुत सीनियर लिसनर की तरफ से आया था और मुझे फिर बाद में चले अफसोस भी हुआ, लेकिन मैं पॉजिटिव वाइब्स दे के क्या अचीव कर लूंगा मुझे ये बताएं, या नेगेटिव वाइब्स दे के उससे क्या नुकसान. टीम को तो जैसा खेलना है वो तो खेलेगी. इंडिया और पाकिस्तान की टीम में एक डिफरेंस है, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू. आई मीन डू यू रियली वांट मी टू टेल यू दैट ईशान किशन जो है उसको अब इसका आरएस राव ऐसी घुमाने वाला है ना उसको, ईशान किशन को तो पता नहीं चलेगा, उसको दिन में तारे नजर आने वाले हैं. खैर वो तो रात में मैच होना है लेकिन रात में पता नहीं क्या नजर आएगा उसको, ऐसा हारिस रूफ कर देगा. मैंने उस दिन ईशान किशन की वो आप जरा चेक करें ना उसकी बैटिंग जो उसने की है, अभी हारिस रूफ लेवल के बॉलर जब उसके सामने आएंगे उनके साथ क्या खिलवाड़ करेगा वो, आप मुझे ये बताइए. तो वाई क्रिएट फॉल्स होप्स, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है यार. अब मैं तो कहता हूँ ये ज्यादा अच्छा है कि आप मेंटली अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, मेंटली तैयार रखे हुए हैं कि यार उस मैच में कुछ नहीं होने वाला, कुछ हो गया तो फिर प्लस है, नहीं हुआ तो फिर ज्यादा आपको अफसोस भी नहीं होगा, ये वाला सिलसिला है. और आर्सेनल के सपोर्टर की हैसियत से मैंने ये बात सीख ली है कि यार बड़े मैचेस में तो कोई उम्मीद ही ना लगाओ, बल्कि पहले से ही स्टार्ट करो, बल्कि पहले हाफ में अगर कोई मुखालिफ टीम ने दो गोल किए हुए तो आप हैरान होते हैं भाई चार गोल क्यों नहीं हुए यार. तो ये वाला सीन है सर, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट. आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज बीइंग रियलिस्टिक. सो बहरहाल चलें जी, स्पॉटलाइट कहते हैं, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अच्छा चले मैं देख लेता हूँ जी ये क्या आंसर चैनल है, फिर उसके बाद हम देखते हैं. इसके अलावा देन वी हैव गॉट सैयद मोहम्मद तुफैल जान, सॉरी यार बहुत लेट मैसेज मैंने आपका शाया किया, लेकिन मिशाल दानियाल कुशाल को मेरी तरफ से जो है वो हेलो बोल दीजिएगा. आई एम सॉरी मैंने लेट मैसेज शामिल किया. इसके अलावा इमरान अहमद कहते हैं भाई व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रियासत मदीना, ये तो फिर वहाँ के लोग बताएंगे, आप भी कराची के मैं भी कराची के हूँ. मीर खुर्रम कहते हैं आई रेड समवेयर दैट दिस IMF प्रोग्राम इज लेफ्ट फॉर वन ईयर, आफ्टर वर्ड्स वी विल बी इन अ गुड पोजिशन. वेल IMF प्रोग्राम की जो मुद्दत है ज़ाहिर है वो तीन साल की थी, ज़ाहिर है अब अगले साल आके जो है वो खत्म हो जाएगी. So this is the last time that we are in negotiation with them. और ये अक्सर काफ़ी सारे लोग जो है ना ये कहते हैं कि यार एक अरब डॉलर ही तो है, कहीं से चंदा जमा करके हम एक अरब डॉलर पाकिस्तानी बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर दे. एक अरब खैर पाकिस्तानी बिजनेसमैन कर ही ना दे कंट्रीब्यूट, एक अरब डॉलर टैक्स तो पे नहीं करना बिजनेसमैन को, एक अरब डॉलर दे देगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को. नहीं देखिए जी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको IMF की सील ऑफ अप्रूवल चाहिए होती है, आपको IMF की नोट चाहिए होती है. IMF आपकी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करता है और वो ये दुनिया को बताता है कि देखिए अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है और कहता है जी मेरे ख्याल से इस वक्त इकोनॉमी में इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें लग ये रहा है कि ये इकोनॉमी सही डिसीजन, ये गवर्नमेंट सही डिसीजन ले रही है, मुल्क सही डिसीजन ले रहा है. आप इस रिपोर्ट कार्ड को लेके जो है ना इट्स जस्ट लाइक एन असेसमेंट जो कि आप अपनी करवा लेते हैं और आप वो असेसमेंट करवाने के बाद जो है ना वो फर्दर फंड रेजिंग करते हैं. मसलन ये कि कल मैं प्रॉफिट मैगजीन में ये पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस साल 3.5 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज करने का प्लान है 3.5 अरब डॉलर, जिसमें आई थिंक ग्रीन बॉन्ड भी पाकिस्तान इस बार सोच रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बॉन्ड जो होते हैं. इसके अलावा पैंडा बॉन्ड का पाकिस्तान का प्लान है, यानी जो चाइना में मेरे ख्याल से कुछ होता है सीन उस बॉन्ड का, वो मैं पढ़ लेता हूँ उसके बारे में. और सुकूक पाकिस्तान जो इस्लामिक बॉन्ड होता है वो इशू करने का प्लान है. अब क्या होगा कि IMF का जब इस पर असेसमेंट पॉजिटिव होती है हुकूमत के बारे में और आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से, सो यू गेट अ बेटर रिसेप्शन फ्रॉम द मार्केट, आपको मार्केट से अच्छी पजीराई मिलती है. और मेरा मतलब पजीराई मिलती है, अच्छी पजीराई तो कुछ नहीं होता, पजीराई इटसेल्फ एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑक्सीमोरोनिक बात कर दी मैंने, बट बहरहाल आपको पजीराई मिलती है. और उसमें ये होता है कि आपको रेट पे बेहतर मिल जाता है. सो दिस इज व्हाई यू नीड टू बी इन अंडर द IMF प्रोग्राम. अल्लाह करे ऐसा हो कि यार जो ग्लोबल कमोडिटीज की प्राइसेस भैंक करके नीचे आ जाएं, वर्ल्ड थोड़ी बहुत मामूली निक्की सी, जैसे अभी चाइना से वाइब्स आ रही हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन, बिकॉज दीज इकोनॉमीज, दीज ह्यूज इकोनॉमीज आर ग्रोइंग रियली फास्ट, बहुत तेज. ये मैं शायद पिछले 2-3 हफ्ते में 10 दफा ये बात बोल चुका हूँ, रट चुकी होगी आपको, कि अमरीका चाइना यूरोप जो बड़े बड़े जिन है इकोनॉमी के, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं पोस्ट कोरोना. इनकी ग्रोथ जरा सी स्लो डाउन हो जाए तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अगले साल करंट अकाउंट की बेहतर हो सकती है. करंट अकाउंट का नंबर भी बाय द वे कल स्टेट बैंक ने रिलीज कर दिया है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा. लेकिन उसमें कुछ जहाँ पॉजिटिव बातें हैं वहाँ वहाँ पे बड़ी बड़ी मनफी बातें भी हैं. और मनफी बातें ये कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले महीने से तो बेहतर हुआ है, बट ये क्योंकि साइक्लिकल होता है इसलिए हमेशा उसको पिछले साल से कंपेयर करें. पिछले साल सितंबर में जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अपने काफ़ी निचली सतह पर थी तो वी हैड अ सरप्लस, मामूली सा सरप्लस. इस साल हमें जो है वो तकरीबन कोई आई थिंक कोई 1.3-1.4 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान को देखना पड़ा है, जो कि परेशान कुन तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है नहीं. इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं जिसकी वजह ज़ाहिर है इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, पाकिस्तान को चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं वहाँ पे. अब ले जाके थोड़ा सा अल्लाह करे ये प्राइसेस कम हो तो सिचुएशन ये बेहतर हो सकती है. हो सकता है हमें अगले साल के बाद IMF की ज़रूरत ना पड़े, पर अभी अगले साल में बहुत टाइम है और अभी बहुत मदोजस देखना है, बहुत सारा जवार भाटा भी आएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा सिचुएशन क्या होगी. तो ये मीर खुर्रम साहब, दिस इज़ माई लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस IMF थिंग. अब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कल बोला है कि जी अच्छी खबर आने को है, खुशखबरी बस वो देने वाले हैं. IMF की जो रीजनल डायरेक्टर हैं फॉर दिस रीजन, उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं. दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी हर्ड इन द मीडिया 3 or 4 days back, जहां पे कुछ अखबारात ने काफ़ी सर्टेंटी के साथ इस तरह बात बोली थी कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात फेल हो गए हैं. मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये डिलिबरेट, ये जिन साहब ने ये रिपोर्ट की थी उन्होंने इससे पहले 2020 में भी ये बोला था कि जी मुज़ाकरात फेल हो गए IMF के साथ, उसके चंद दिनों के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए अपनी जो रकम है वो रिलीज़ कर दी थी, जो उस किस्त में जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनना था, जो था उस कर्जे का पार्ट. तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि डिलिबरेटली ये खबरें जो है ना वो फैलाई जाती हैं सिर्फ इसलिए ताकि एक मायूसी फैलाई जाए और एक अफसोस का सा आलम जो है वो फैला दिया जाए. बाद में मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या
खैर बच्चों वाली बेवकूफाना बात करने वाला हूँ कि मैं क्या अखबार के एडिटर कभी आके उनको पूछते हैं कि यार तूने तो अपने जराए कोर्ट की तरह जराए तो 180 डिग्री पे गलत निकले यार वो, लेकिन कहाँ करते हैं, क्योंकि वो साहब जो कि ये खबरें छापते रहे वो तवातुर के साथ इस तरह की जो है ना वो बातें करते आ रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने एक्सचेंज रेट पे बहुत बड़ा फोपा किया था अगर आपको याद हो. सो आई डोंट नो व्हाई यार, आई मीन प्राइवेट जॉब्स में इस तरह की गलतियां करें आप किस तरह सर्वाइव कर जाते हैं अनलेस यू आर ड्रिवन बाय एन एजेंडा. अहमद साज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एक रुपया हर स्टोर वाले चार्ज कर रहे हैं एज पर स्टोर इट्स एन FBR फी चार्जेस, क्या ऐसा ही है? देखें जी ये बिल्कुल जी ये बात उन्होंने दुरुस्त चार्ज की है, ये एक रुपया चार्ज कर रहे हैं बेसिकली. अगर आपको पता हो देखें नीचे लिखा हुआ भी है, ये पिंडी इस्लामाबाद की एक मशहूर तरीन बेकरी है यार, वो ठीक है बेकरी वैसे यार, उसका स्टफ मुझे भी बड़ा पसंद है. आप पता है मैं किस बेकरी की बात कर रहा हूँ, हैशटैग पे आप देख सकते हैं, वैसे नाम नहीं लूंगा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी. वो FBR का पॉज उन्होंने जो है ना वो इंस्टॉल किया होगा, सही उसकी इंस्टॉलेशन की एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट जो है बहरहाल वो FBR ने इनको अलाउ, हुकूमत ने इनको अलाउ कर दिया कि आप एक रुपया जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज इसकी एक ऑनगोइंग कॉस्ट भी, आई एम श्योर इसकी एक रिडंडेंट कॉस्ट भी है. तो FBR कह रहा है कि मैं क्यों कॉस्ट लूँ, मेरा काम तो टैक्स जमा करना है, तुम ही बेयर करोगे कॉस्ट. तो वो हर रसीद में जो है जो भी बंदा जो भी दुकान जो भी एस्टेब्लिशमेंट FBR के पॉज के साथ जो है वो मुंसलिक है वो उस पर एक रुपया पे कर रही है, तो कर दें एक रुपया. और यार मैं बताऊं मैं एक जगह से ना ग्रोसरी लेता हूं, मेरी पसंद की दुकान है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा. वो लोग क्या करते हैं वो ना वो एक रुपया चार्ज करते हैं थैली का आपसे ना, जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग लेते हैं यार. एक बार उस एक रुपये के चक्कर में एक मैंने ऐसा फड्डा देखा उस जगह पे, तो वहाँ पे ना हमारा एरिया में एक था ना वो एक हमारा भाई रज्जाक भाई थे ना, वो उनको बोला है तुमने मेरे से एक रुपया कैसे चार्ज किया. अरे यार उस बंदे ने हिला के रख दिया उस स्टोर को सीरियसली, एक रुपया तुमने मुझसे कैसे चार्ज किया मुझे बजाए बगैर मुझे बताओ, मेरा बजट आउट हो गया. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आज हमारी कुछ स्ट्रीमिंग का जो है ना वो कोई शदीद किस्म का जो है वो सब मसला चल रहा है, और उसका जो प्रॉब्लम हुआ है वो अब ये हुआ है कि काफी सारे दोस्त हमारे यहाँ शो को फॉलो नहीं कर रहा है, which is a sad thing I would say, but what to do. Alright ji, Sarad Mughal sahab, thank you so much for your message, you are tweeting after a very long time. SK कहते हैं only India can start a trend for boycotting Olympics in China. अच्छा करेंगे नहीं, अभी तो पाकिस्तान से मैच से भी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं ना, सो इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो कि ये कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो है वो भी बॉयकॉट किया जाए. हाँ ये तो जिक्र करना मैं भूल ही गया था इस वक्त मैं बात कर रहा था, बट खैर anyway. इसके अलावा निया साजे साहब कहते हैं भाई इज देयर एनी इशू विद द न्यूज बुलेटिन और FM 104. भाई देखें बिल्कुल अब आपको बता चुका हूँ कि नाउ दिस इज मेरा FM 107.4, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूज चैनल नाउ, द न्यूज चैनल समा TV जो हमारा एक सिस्टर कंसर्न हुआ करता था, इट्स नॉट देयर एनी मोर, सो देयर आर नो हेडलाइन न्यूज नाउ. सो वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम आर जो हमारी पोजिशनिंग थी जिसमें करंट अफेयर्स वाला एलिमेंट भी था, दैट्स नॉट देयर एनी मोर, सो नो मोर हेडलाइन न्यूज नाउ, सॉरी सर. आपको फिलहाल भाई भाई गुजारा करना पड़ेगा. एसएन सलीम कहते हैं ओमान टीम के प्लेयर्स ओमान नेशनल्स हैं या ये भी कफील के अकामे पर खेल रहे हैं? सर शुद्ध शुद्ध इमिग्रेंट टीम है, यानी एक तो कोई सुल्तान जरवानी खेल रहा होता है, यानी मैंने नामों को देखा मुझे तो कोई नजर नहीं आया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मुझे सुल्तान जरवानी याद है 96 वर्ल्ड कप में उनका कैप्टन था वो जो एलन डोनाल्ड के सामने बगैर हेलमेट के खेलने आ गया था, वो डोनाल्ड ने सर पे बॉल मारी थी उसके खींच के बाउंसर, तो वो तो लोकल था ना, वो बड़ा पार्टी करवाता था अपनी ना UAE की टीम की, होटल पसंद नहीं आया चलो यार कमरा चेंज, अच्छे होटल बेहतर होटल पे ले जाया करता था अपनी टीम को, उस पर बोली थी ये बात एलन डोनाल्ड ने, इसलिए उसके सर पे सोचें साउथ अफ्रीका का एक गोरा जो है ना उसको दूसरे एरोगेंट लग रहे थे, यानी किस लेवल का एरोगेंट होगा सुल्तान जरवानी. लेकिन ओमान की टीम पूरी जो है ना वो इमिग्रेंट्स पर है, बल्कि वो जो थोड़े बहुत ओमानी नजर आ रहे थे ना, मैं मजाक में यही कह रहा था, मैंने कहा सब कफील बैठे हुए इनके मंगवाए हुए वीजे, इनके स्पॉन्सर्ड वीजा पे ये सारे बैठे हैं, वही मैच देखने आए हुए होंगे ओमानी वहाँ पे, तो वही वाला केस है जी. अच्छा जिसके अलावा काजी शिराज उल हक साहब वालेकुम अस्सलाम से, एंड इमरान अहमद साहब ने ट्वीट शेयर किया आसमा शिराजी साहब का आर्टिकल आया है BBC में. भाई देखिए आसमा शिराजी साहबा जाहिर है उनका एक सर्टन पॉलिटिकल व्यू है स्टैंड है, हम ये सब देख चुके हैं. मसला ये है कि BBC अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन चीज़ों के लिए, दैट इज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी. ऑलराइट सर चलें जी. And then we have got stuck in traffic jam. Allah behtar kare ji. Kamran Bakhtiyar sahab, aap jald se jald is traffic jam se nikle. Aasif Ayaz sahab, Khan should tell the truth about fuel price, that there is no respite till international market settle down. Nation has to weather the storm and brace for it. Dekhiye, main is pe Aasif sahab kal baat kar chuka hu. Main parson kafi tafseel ke saath. Inki jo hai na wo kafi khatarnak aur kafi buri strategy hai jo aajkal chal rahi hai information ke hawale se, jo inko bahut shadeed nuksan pahuncha rahi hai. जो एरी गरी बातें किए जा रहे हैं इमरान खान साहब. मैं अभी देख रहा था खान साहब के एक फाइटर डिफेंड कर रहे थे कि जी करप्ट होने से तो बेहतर है कि वो मुसलमानों की दोबारा से रिवाइवल की बात नहीं यार, अभी रहने दो मुसलमानों का रिवाइवल, हम तो अगले साल देख लेते हैं. पब्लिक अभी परेशान है महंगाई की वजह, समझें यार. सुनने में आ रहा है दूध की कीमत 45 रुपए फी लीटर बढ़ गई है, यानी यार क्या किया जाए. एनीवे, जहां पे इतनी ज्यादा इस वक्त होराइजन पे खौफनाक और बुरी बातें हैं, वहां पे जाहिर है जो एक अच्छी बात है वो पाकिस्तान के चंद सेक्टर्स हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, यार मसला ये हो रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को हमने जिस तरह मैं वो बड़ा खैर वो दोस्तों यारों में मकसद लव्स, जिस तरह आपने इग्नोर करके रखा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, यानी मैं कभी कभार बड़ा हैरान हो जाता हूँ. यानी हमारे वही दोस्त जो कि इन्हीं लीडरान के बड़े सपोर्टर्स हैं, जो हमारी माजी में वज़ीर आज़म वज़रा रह चुके हैं, नॉल पिछली दो हुकूमतें जो आई थी इमरान खान साहब से पहले, उनके बड़े हार्ड डाई हार्ड सपोर्टर हैं, जो और वह बांग्लादेश से पाकिस्तान का कंपेरिजन करते रहते हैं. बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कहाँ किधर पहुँच गई, देखो यार हम कहाँ पहुँच गए, तबाही, ये मुल्क तबाह कर दिया, ये वो, डिफेंस बजट कम करो. अच्छा यार नहीं यार, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड सर्टन स्ट्रैटेजी, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड सर्टन प्लान. आप स्ट्रैटेजाइज करेंगे, आप प्लान लेके जाएंगे, आप अपने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे तो नंबर इंप्रूव होना शुरू होंगे, जैसा कि हम पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में इस वक्त देख रहे हैं. ज़ाहिर है पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर हमारी बैकबोन है, ना सिर्फ हमारी GDP की बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की भी. और जो उसमें इस वक्त बहुत अच्छी बात नजर आ रही है, जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है, वो ये दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. यानी पाकिस्तान अब जैसे कहते हैं ना कि जो इसकी चेन जो है, जो इसकी आई वुड से फूड चेन है, उसमें पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है. यानी पहले तो हमने कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट कर दिया और आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है जी. वहाँ पे फिर चाइना में उस पर फ्यू फ्यू फलाना ये वो ब्रिटिश ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड, जर्मन ब्रांड के लोगों लग के वो उससे सेवरल टाइम हाई प्राइस पे जाके इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगी. सो पाकिस्तान ज़रा थोड़ा सा अभी उस सप्लाई चेन में जो है ना, जो फूड चेन में ज़रा थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर आना शुरू हुआ है. सो योर वैल्यू, दो गुड्स की वैल्यू जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सेम अमाउंट ऑफ गुड्स में, सेम टनेज ऑफ गुड्स में यू आर फेचिंग अ बेटर प्राइस नाउ. दूसरा माशाल्लाह पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, स्पेशली आजकल कॉटन की काफ़ी बात चल रही है और कॉटन के जो अराइवल्स अब आने शुरू हैं, बिकॉज फसल जो है वो इस वक्त चुनी जा चुकी है या चुनी जा रही है या जो भी हो रहा है, अब वो फैक्ट्रियां बाय कर रही हैं और ये सारा जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं एंड ऑल जो इसका धागा बनाएंगी और फिर उस धागे से कपड़ा बनेगा और फिर उस कपड़े से गारमेंट्स बनेंगे, निटवेयर्स बनेंगे, इंटरलूप वाले उसके मोज़े बनाएंगे और वो माशाल्लाह 100% ऊपर गई हैं. सो हुकूमत ने फोकस किया था कॉटन पे इस बार. मैंने आपको बताया था एक स्पेशल बीज भी इस्तेमाल हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी का, नयाब ने जो अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करके किया था. प्राइस बहुत अच्छी गवर्नमेंट किसानों को दे रही है. तो आप ये देखें कि मैं देख रहा था नंबर ब्रेकअप, भावल नगर जैसे एरियाज और सांगड़ जैसे एरियाज जो कि पाकिस्तान की कॉटन बेल्ट के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वहाँ पे इस बार एक बार फिर से कॉटन जो है वो बोई गई है और फिर उसके रिजल्ट ये आ रहे हैं दैट थिंग्स आर लुकिंग बेटर. सेम हैपेंड विद द वीट, जो पाकिस्तान में गंदुम पंपर क्रॉप, जो क्रॉप आप उठाएं माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है. सिमिलरली टेक्सटाइल्स की तो मैं बात कर चुका हूँ आपने किया. एक एरिया जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहना चाहिए ना कि अच्छा, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मैं आपसे ओवरऑल बात कर लूं तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो तकरीबन 8.8 बिलियन डॉलर्स जो है, अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज मिला लूं, अगर मैं सिर्फ गुड्स की बात करता हूं तो दैट्स 7.24 बिलियन की पाकिस्तान ने फर्स्ट क्वार्टर में, पहली सेमाही में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए हैं. अगर हम इसी जो है वो तरीके से चलते रहे तो देर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट वी इंशाल्लाह विल क्रॉस 30 बिलियन. बहुत सारे लोग तो इससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं लेकिन लेट्स बी फाइन. सो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट पिछले साल कर चुका है. उम्मीद यह है कि ये नंबर अब जो है वो 20-22% से बढ़ सकता है. द डायरेक्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके, सो लेट्स अप्रिशिएट देम फॉर दिस. आप नहीं करेंगे अप्रिसिएशन अगर इस बात पे, आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के मुर्तकिब होंगे. ठीक है, अब आते हैं उस सेक्टर की तरफ. पाकिस्तान के सर्विसेज सेक्टर में इस वक्त एक शाइनिंग स्टार है विच इज द पाकिस्तानी टेक की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट. आई एम श्योर हमारे वो तमाम दोस्त जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जिनका टेक्नोलॉजी से जो है वो वास्ता पड़ता है पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल, उनको आजकल रिसोर्स को रिटेन करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए जो है ये बनकर आ रहा होगा. और इसके पीछे जो है वो वजह ये है दैट पाकिस्तानी जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त जो पाकिस्तानी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं एक्चुअली वो ना सिर्फ वैल्यू एडिशन की साइड पे काम कर रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन देयर. आई मीन द पाकिस्तान के अगर आप नंबर चेक करें पाकिस्तान, आई मीन मैं तो बल्कि इस वक्त जो ग्राफ बनकर आता है उसका तो इस वक्त कोई कंपैरिजन ही जो है ना वो नहीं चल रहा है पाकिस्तान का. और क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो सितंबर की अगर हम बात करें, सो हमने टोटल एक्सपोर्ट जो टेक्नोलॉजी की है वो $215 मिलियन की हैं पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले में. दिस इज अप 36%. और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, सो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट रही है, दे हैव बीन अप 40%. सो दिस इज वन एरिया विच इज ग्रोइंग रियली रियली फास्ट. और ये वो एरिया है जो कि मासूमियत के साथ ग्रो कर रहा है ना. लाइक इनको ना टेक्सटाइल वालों की तरह के डिस्काउंटेड फाइनेंसिंग वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, ना इनको एक्सपोर्ट रीफाइनेंस वाली कहानियाँ होती हैं, ना कुछ होता है. खामोशी के साथ दिस नंबर इज ग्रोइंग बिकॉज आपने एक इनेबलिंग एनवायरमेंट जब आप प्रोवाइड करते हैं, सो उसके बाद ये रिजल्ट निकल कर आना शुरू होते हैं. एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये कि आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए बिग टाइम करना नहीं पड़ता. ऑल यू नीड इज केपेबल ह्यूमन रिसोर्स. आपके पास अगर अच्छे दिमाग वाले लोग मौजूद होंगे तो ये नंबर भी बढ़ेगा. सो देयर आर, जहां पे इतनी सारी डिप्रेशन वाले सीन चल रहे हैं, यस एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बटवे को ही देखते हैं कि यार मैं कल ये इतने का ले रहा था, आज मुझे इतने का लेना पड़ रहा है. यस, सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है. बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें भी आपकी इकोनॉमी के साथ हो रही हैं. मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नंबर पिछले हफ्ते वैसे ही डिस्कस कर चुका हूँ. अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अपनी तारीख में पाकिस्तान ने कभी नहीं की हैं. हाउएवर इन्फ्लेशन है और मेरे ख्याल से इसको किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए. इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि खुदा के वास्ते खान साहब प्लीज टेलीविजन पे आएं, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो आप खुद आके अनाउंस करें और लोगों को समझाएं कि ऐसा है. ये अब जो है ना, ये नोटिफिकेशन बोलते अब इनको सिचुएशन अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, वरना इनका जो हाल होने वाला है ना इनको, मैं अगले इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उसमें भी 2 साल हैं, बहुत टाइम है उसमें, लेकिन वो बहुत पीपल विल बी अनफॉरगिविंग. 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है टू फिक्स योर थिंग्स अप. सो लेट्स सी, चलें जी अभी चलते ब्रेक की, जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, Sunrise Show में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, दिल की आवाज़ आप तक पहुंच रही है. अच्छा यार, काफ़ी सारे लोग आपसे ना मुझसे ये कह रहे हैं यार उस पे ज़रा उस मुबाहिसे पे रोशनी डालें ना, जो ये वाला मुबाहिसा हुआ है इन दोनों के दरमियान, जिसे कहते हैं कि शाज़ेब और इनके दरमियान और हमाद. यार देखिए, मैं इस पे देखिए, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ, आई मीन सी दिस वॉजेंट एन इंटेलेक्चुअल डिबेट. ये कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट ऐसी डिबेट नहीं जिससे आप कुछ सीखेंगे. ये इनके पर्सनालिटी क्लैशेस हैं. इन दोनों के दरमियान मामलात काफ़ी पर्सनल हो चुके हैं इस वक्त. हमाद जिस तरह आपसे तुम पे आ गया था, और जिस तरह अर्नब गोस्वामी की बदरू जो है वो शाज़ेब में सराहियत कर रही थी, उससे अंदाज़ा बड़ा क्लियरली हो रहा था. एंड दिस एंटायर डिस्कशन, यानी लिटरली, क्योंकि वो 10-10 मिनट के चंक्स ट्विटर पे होते हैं, मैं शायद 2 या 2.5 चंक सुनने के बाद मैंने कहा यार ये तो बात हो ही नहीं रही है, ये तो बस फजूल किस्म की. वाकई ये पर्सनल क्लैश इन दोनों के दरमियान जो है ना ये है. सो बहरहाल अब इसमें देखिए, हमेशा जब भी इस तरह के डिस्कशन होते हैं, द रियलिटी इज समवेयर इन द मिडल. कोई दरमियान में कहीं कोई हकीकत होती है. अब उसमें यही किया जा सकता है कि यार लिसन टू सम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट. आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को जो है वो सुनना. यार मसला ये ना, इस मुल्क में मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहाँ से ढूंढ के लाऊं. एक बार मैंने ट्वीट भी किया था कि यार मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अब बचा है कि जिसको मैं फॉलो कर सकूं, कि हु इज़ नॉट एजेंडा ड्रिवन, हु इज़ नॉट, यानी जैसे कि किसी ने मुझे मुबशर लुकमान तक को, मुझे सर मजाक कर रहा था मेरे ख्याल से, उन तक को ट्वीट कर दिया था, देख लें जी ये, किसी ने कहा इमरान रियाज खान, खुदा का खौफ करो यार. आई मीन वो जर्नलिस्ट बड़े होंगे, मैंने सुना मिलियंस उनके व्यूज़ आते हैं वीडियोस के, वो अपनी जगह है, बट ही इज़ अ वेरी पार्टिजान प्रेजेंटर. सो यार ये मसला है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली नॉट इन द पोजिशन टू टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज देर वॉज नथिंग इंटेलेक्चुअल अबाउट द डिस्कशन. ये दोनों के दरमियान एक पर्सनैलिटी क्लैश है जो कि चलता रहेगा. और क्योंकि शाज़ेब के पास ज़्यादा एयर टाइम है, तो शाज़ेब इज़ गोइंग टू कॉल द शॉट्स देयर, और वो इसको लीड करेगा बिकॉज उसके शो की व्यूइंग भी बहुत अच्छी है. सो हमाद को सोच समझ के इसमें गेम में हिस्सा लेना चाहिए था. अब वो आ गए हैं तो अब ये गेम ऑन हो गई. नाउ दिस वॉर इज़ ऑन. अब वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, ये क्या करना है बट ही इज गोइंग टू हैव. आप वो मुबाइसा सुन लेते, उसमें आप ये बात नोट कर लेते, बल्कि हमाद को ये कहना चाहिए था कि यार तू मुझसे आगे डिबेट करेगा, तुम बगैर अपनी आईवी के मेरे साथ डिबेट करोगे, तुम्हें पीछे से तुम्हारे जो रिसर्चर्स हैं या जहां से तुम्हारी लाइन मिली हुई है मैं तो उनके साथ, एंड यू विल नॉट बी सिटिंग इन योर स्टूडियो, वी विल सिट आउटसाइड समवेयर. आपने ये बात नोट की थी कि इवन दोनों के वॉइस लेवल का डिफरेंस था, यानी शाहजेब की जो वॉइस थी वो ओवरलैप कर रही थी ऑन हमाद्स वॉइस, बिकॉज ही वो यार वो वैका खेलने गया है, अब वहाँ विकटे तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे. बहरहाल ये मेरे कुछ सर्टन इस पे व्यूज हैं, इस पे मैं ज्यादा बात करना और मैं क्या बात करूँ उस पर, मैंने कुछ नहीं सीखा भाई इस इंटरव्यू से, सीरियसली दिल यही चाह रहा था कुछ सीखेंगे. मुझे कभी कभार ऐसा लगता है, मैं ये अली खजर साहब से अग्री करता हूँ, ये बिजनेस रिकॉर्डर वाले जो रिसर्च के हेड हैं, पाकिस्तान में इस वक्त डिबेट ही बिल्कुल गलत हो रही है एनर्जी के हवाले से, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ये डिबेट निकल गई है. ये इस वक्त हमें सवाल ये करना चाहिए कि भाई करना क्या है, कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, क्या जिस लेवल पे आप कहते हैं जी इतने कार्गो सिक्योर कर लो इतने, वो बाइक किस प्राइस पे ये आरएलएनजी आने वाली है, किस प्राइस पे आरएलएनजी आने वाली है. प्राइसेस अल्लाह का शुक्र है कुछ रिलीफ उसमें जरूर मिला है, लेकिन सौदे तो हम कर चुके होंगे, जाहिर है पहले ही बुकिंग मार चुके हैं हम. तो यार ये मैं कह रहा हूँ ना, डिबेट ही पाकिस्तान में गलत हो रही है यार. साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया की बात करनी थी सारी, पता नहीं कहाँ लगा दी आप लोगों ने. एनीवे बाद में बात कर लेंगे. अच्छा जी, इमरान इरफान अहमद कहते हैं अपेरेंटली खान साहब इज बिट टू ऑब्सेस्ड और डिप्रेस्ड अबाउट द वन अपॉइंटमेंट ही इज गोइंग टू मेक. लेट्स सी, आई डोंट नो मैन व्हाट इज गोइंग ऑन, बट बहरहाल आई होप के उनके कुछ जो पता नहीं इमरान खान साहब कुछ एडवाइजर्स सुनते भी हैं या नहीं सुनते, लेकिन खैर. वासिफ जैदी, यू आर ऑफ फ्रॉम रेडियो 8:30 से 8:49. देयर वर वियर्ड सॉन्ग बीइंग प्लेड ऑन 107.4 ड्यूरिंग दिस टाइम. आई एम लिसनिंग इन रावलपिंडी इन माय कार. अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस इशू यार, काफी सारों लोगों को ये मसला हुआ है. मुझे बताया ये गया कि इस्लामाबाद की ट्रांसमिशन में आज कुछ इशू हुआ है, इस्लामाबाद के ग्रुप में भी इस हवाले से काफी जो है उस वक्त छह मगोइयां जा रही हैं. भाई इसका तो मैं आपको फिर बस यही बताता हूँ हल के, आप जो है वो ऑनलाइन आ जाएं, रेडियो गार्डन लगाएं. मैंने एक यूआरएल भी शेयर किया आप लोगों के साथ, वो भी आप देख लीजिए. एनीवे चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. ओए माशाल्लाह, योर शो इज ट्रेंडिंग एट नंबर वन येट अगेन इन पाकिस्तान. जबरदस्त, काफी सारे मैसेजेस आए लेकिन मैं शायद पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ. बल्कि अभी किसी ने कहा था कि मेरे लिए एक ये गाना तो चला दें. उन्होंने कहा कहाँ से गाना चलाऊं, टाइम आप मेरे लिए टाइम ला दें, मैं आपके लिए गाना भी चला दूंगा. किसी ने अपनी पसंद का एक गाना जो उस वक्त फरमाइश की थी. सो बहरहाल वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखा. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द सनराइज शो विद मी अदील, एंड इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. वैसे वाकई काफी मंडे की सी फीलिंग आ रही है, बट दिस इज द मिड वीक एंड दिस इज लाइक मीन ऑलरेडी मिड वीक मीन्स अब तो डाउन हिल है वीक. ऑलराइट चलें जी, कल मिलते हैं, चलते हैं, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.